ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اسے پہلے جو ہمارا درس ہوا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی اہمیت سے یہ دو باتیں ہم نے دیکھی تھیں. اس میں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں آگے بڑھیں, ایک واقعہ دنیا میں عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر آ سکتا ہے. آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ کیا دنیا میں سنت کی مخالفت پر عذاب آ سکتا ہے؟ سوال ہے, اس کا جواب آپ کو دینا ہے. آ سکتا ہے, دلیل کون بتائے گا؟ آپ بولیں گے اچھا وہ ختم ہوا تھا, یہ پھر سے شروع ہوا ان کا. کون سا واقعہ ہے یا کیا حدیث ہے, کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت. کون سی آیت ہے؟ تو اردو لگ رہا ہے. صحیح. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ اس رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے, کہیں ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. کوئی حدیث اس سلسلے میں ہم نے دیکھی تھی, یاد ہے؟ اس حدیث میں اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے, کیوں نہیں کھایا؟ ما منعہ الا الکبر, کہ اس آدمی کو ویسا کھانے سے رکاوٹ کیا تھی؟ بس گھمنڈ کی وجہ سے. اس لیے یہاں پر صحابی کا لفظ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ واقعی کوئی صحابی تھے یا وہ شخص منافق تھا, ہم کو نہیں معلوم. اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تکبر کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں کر سکتا, اس لیے ہم کو نہیں معلوم. ہاں غالب گمان یہی ہے کہ وہ منافق ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ شریک تھا, یا کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کو دین کا واقعی علم نہ ہو, ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, کل بھی یمینک, دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا نہیں کھا سکتا. لیکن یہ نہیں کھا سکتا, نہیں کھا سکتا واقعی تھا یا اپنے کو نہیں جمتا, یعنی یہ تکبر کے طور پر تھا, نہیں نہیں میں نہیں کھا سکتا, سیدھے ہاتھ سے آپ کو کھانا ہے آپ کھاؤ, میں نہیں کھا سکتا. تو یہ انکار کی صورت میں تھا, یہ گھمنڈ کی وجہ سے تھا. اسی لیے صحابی جو راوی اس کے ہیں وہ کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر. تو سنت کے مقابلے میں گھمنڈ کرنا دنیا میں بھی عذاب کا سبب ہے, بلکہ ایسا آدمی اس کے لیے خود کس نے بدعا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی آپ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود سنت کی مخالفت آپ کو پسند تھی؟ یعنی اللہ کے نبی کا حکم نہیں ماننا بہت سخت معاملہ ہے. اور دیکھیے عجیب چیز کیا ہے, جملہ اس کا کیا ہے, لست تطعت, یعنی لا استطيع, میں نہیں کر سکتا. حالانکہ اسلام میں اگر کوئی آدمی کوئی چیز نہیں کر پائے تو اس کے لیے رخصت ہے. قرآن میں آیا تھا اللہ نے کیا فرمایا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یعنی کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, کیسا پڑھے گا, بیٹھ کے, کیونکہ وہ پڑھ سکتا ہے. تو جو آدمی نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے ویسے بھی چھوٹ ہے, تو اس کو بھی چھوٹ ملنا چاہیے کہ نہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے, میں نہیں کھا سکتا تو بھی عذاب دے رہے اس کو, یعنی ایسا کیسا. اسی لیے صحابی نے اس غلط فہمی کو واضح کیا اور کہا کہ میں نہیں کھا سکتا, یہ پریکٹیکلی نہیں کھا سکتا ایسا نہیں تھا, وہ کھا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کھا سکتا کیوں بولا, گھمنڈ کی وجہ سے. تو اصل جرم کیا ہے یہاں پر, گھمنڈ ہے. وہ کھا سکتا تھا لیکن پھر بھی اس نے کھایا نہیں. تو ایسا اگر کوئی آدمی کرتا ہے کہ سنت پر عمل کر سکتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان سکتا ہے, کر سکتا ہے عمل, لیکن گھمنڈ کی وجہ سے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو عذاب آ سکتا ہے, اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح سے دوسری حدیث ہم نے دیکھی تھی, کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اس حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے کچھ سوالات ہیں. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ومن ابا, اے اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ یہاں انکار کرے گا کس چیز کا؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کا, صحیح ہے. اسی لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بار جب میں پوچھتا ہوں تو مجھ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پھر سے ایک بار سمجھانا پڑے گا. آپ نے کیا کہا, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. اب اس کو تھوڑا دھیان سے سنو, دونوں کان سے سنو. میرا ہر امتی کہاں جائے گا سوائے اس کے جو, الا من ابا ہے یا عصا ہے, ایسا بھی رہتا کہ ابا کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے دو لفظ ہیں, ایک ہے ابا, ایک ہے عصا, دونوں میں فرق ہے. دکھ رہا تو فوٹو دونوں کا الگ, معنی کے اعتبار سے فرق ہے کیا؟ اچھا ایک سوال پوچھتا ہوں, یعنی علمی بات, دیکھیے غور کیجیے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان دونوں میں سے ابلیس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو ابا کے معنی دیکھیں گے کیا ہے, اور یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام کے لیے کون سا استعمال ہوا ہے؟ وعصا آدم ربہ فغوا. تو یہاں پر عصا ہے, دونوں میں ڈینجر کون سا ہے؟ دوسرا ڈینجر نہیں ہے, جنت سے نکلے نا, دونوں ڈینجر ہیں, لیکن دونوں میں سب سے زیادہ, دونوں میں زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ ابا. ابا کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنا, انکار کرنا, ابا انکار کر دینا. ابلیس نے کیا کہا؟ نہیں, ابلیس نے سجدہ کیا, اللہ کا حکم تھا سجدہ کرنا, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو بھی تو حکم تھا پیڑ کے قریب مت جاؤ, گئے کہ نہیں گئے؟ گئے, پھل کھائے کہ نہیں کھائے؟ تو حکم ٹوٹا, وہاں بھی حکم ٹوٹا, یہاں بھی ٹوٹا, لیکن وہاں کیسا ٹوٹا؟ انکار. اور دیکھیے وہ حدیث آپ نے ابھی سنی, یہاں بھی شیطان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, ابلیس کے بارے میں, ابا واستکبر, انکار کیا اور گھمنڈ کیا. دو چیزیں جمع ہو گئی یہاں پہ, ویسی وہاں پہ تھی. وکان من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہی تھا, تو کچھ نئی پوزیشن پہ نہیں چلا گیا, وہ پہلے سے کافروں میں سے تھا. اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا اس کے باطنی کفر کو. ابا واستكبر وكان اور یہ عصا کے معنی نافرمانی کرنا یعنی عملا ایسا کچھ کرنا جس سے حکم ٹوٹ جائے. تو انسان کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حدیث میں کیا ہے؟ آدم کی ساری اولاد کیا ہے؟ خطا کار ہے, لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. تو انسان کو بنائے اللہ نے ایسا ہے, اس سے غلطی ہوگی, لیکن غلطی کی بھرپائی کیسے کرے گا؟ وہ توبہ کے ذریعے سے. سمجھ میں آئے؟ تو عصا اور ابا میں فرق ہے. ابا کے معنی انکار کرنا اور عصا کے معنی حکم توڑنا. حکم توڑنا یہاں حدیث میں کیا ہے؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوا اس کے جس نے. تو انکار کس چیز سے کیا؟ جنت میں جانے سے. اچھا, تھوڑی دیر پہلے جواب کوئی دوسرا آ رہا تھا. سنتوں کا انکار کیا اس نے, ایسا حدیث میں. اب دیکھیں دونوں معنی کو لے کر ہم چلتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں گے پھر صحیح مطلب کیا ہے اور دونوں کا انجام کیا. تو اس لیے حدیثوں کو صحیح طور سے سمجھنا بہت ضروری ہے. میرا ہر میرا امتی جب وہ انکار کر دے گا تو امتی رہے گا؟ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ. اب میں بیچ کا ایسا چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے. اب جملہ دیکھیے, دونوں تعریفوں کو لے کے ہم دونوں معنی کو لے کے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک معنی لیتے ہیں تو کیا ہوتا, دوسرا لیتے تو کیا ہوتا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن, دیکھو پھر آ رہا, اصانی فقط ابا, آسا ابا, دونوں آ رہا, دونوں آ رہا. جس نے میری اطاعت کی, اطاعت کا معنی معلوم ہے؟ اطاعت اور اتباع میں فرق یاد آ رہا نہیں یاد آ رہا؟ آ رہا. اطاع, اطاعنی یعنی حکم ماننا, اتباع یعنی جیسا کہا ویسا کرنا اطاعت ہے, جیسا کیا ویسا کرنا اتباع ہے. یاد ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ. من جس نے, عربی سیکھی ہے ابھی, جس نے من, یہ من اور ٹنگ نہیں ہے, ایک من دو من, من یعنی جس نے جو. اطاعنی اطاع اطاعت کی, نی جب جڑتا ہے نی یعنی میری, اطاعنی اطاعت کی کس کی؟ میری. اطاعنی من اطاعنی جس نے اطاعت کی میری, دخل داخل ہو گیا, الجنہ جنت میں, دخل الجنہ. اور گھر میں داخل ہوا تو کیا بولنا پڑے گا؟ دخل البیت. اور مسجد میں داخل ہوا تو دخل المسجد. تو من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن اور جس نے آسانی آسا, پھر واپس آ رہے گھوم کے ادھر, جس نے میری میرا حکم توڑا, میری نافرمانی کی, فقد ابا اس نے انکار کر دیا. تو اگر اس حدیث میں یہ مانا لیتے ہیں کہ کون انکار کرے گا سے مراد نبی کا انکار ہے, تو معلوم ہوا کہ جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے نبی کا, تو اسلام میں باقی رہا. تو ہر شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا, تھوڑی بھی نافرمانی کرنے والا, وہ اسلام سے کیا ہو جاتا؟ تو حدیث تو بھی بتا رہی, صحیح کہ نہیں؟ سب چپ ہو گئے, سوچ رہے سب اپنے بارے میں سوچ رہے کہ میں ہے کہ نہیں. اب جس نے نافرمانی کی اس نے کیا کیا؟ حدیث حدیث بولتے نا آپ لوگ, اب دیوا حدیث کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جس نے حکم توڑا اس نے کیا کیا, اور جس نے انکار کیا وہ جائے گا جنت میں. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوا اس کے جس نے انکار کیا. تو انکار کیا, جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے میرا, میرا ہے, मेरा नहीं, इसलिए हदीस को समझे। इसलिए एक हदीस की बुखारी की हदीस, एक हदीस को समझने के लिए और भी हदीसें देखनी पड़ती हैं। झट के पट वाला मामला सही नहीं है, इसलिए एक रिवायत को समझने के लिए और रिवायत देखनी पड़ती हैं। ये कायदा है उलमा का। और कुरान की आयात को समझने के लिए और आयात और फिर अहादीस और सलफ का फहम देखना जरूरी है। इस हदीस में एक टुकड़ा है जो बुखारी की रिवायत में नहीं है, जो इब्न हिब्बान की रिवायत में है। कौन सी रिवायत में है? इब्न हिब्बान भी, सही इब्न हिब्बान भी एक किताब है हदीस की, उसमें 16 जिल्दें हैं उसकी। उसमें एक टुकड़ा है, सहाबा ने जो सवाल पूछा था उस सवाल को और तफसील से वहां पर बयान किया गया है, इसीलिए आपके नोट्स में भी है, इसीलिए मैंने वहां पर इजाफा किया ताकि समझ में आए क्या अल्फाज हैं। वली इब्न हिब्बान या रसूल अल्लाह वमन यअबा अन यदखुल जन्ना, इनकार किस चीज का? अल्लाह के रसूल भला, ब्रैकेट्स में लिखा आप, और इब्न हिब्बान की रिवायत में है कि ए अल्लाह के रसूल भला कौन जन्नत में जाने से इनकार करेगा। इनकार किसके सिलसिले में है? जन्नत में जाने के सिलसिले में। यानी यहां पर आप फरमा रहे हैं कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवाय उस आदमी के जो कहे मेरे को जन्नत में नहीं जाना है। सावन पूछा अल्लाह के रसूल भला कौन आदमी जन्नत में जाने से इनकार करेगा, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता। आपने कहा जिसने मेरी फरमाबरदारी की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से गोया इनकार किया, मैं नहीं आना चाहता इसलिए मैं मान रहा भी नहीं। समझ में आई बात? कि आदमी का अमल बाज हालात में उसका कौल बन जाता है। पिछली मर्तबा मैंने एक मिसाल दी थी, किसी को याद होगी? वो है याद? बस आई। अब बस आई, अगर अब एक आदमी चुप अपना बस स्टॉप पे खड़ा है तो उसको देख के कोई कहना कहेगा अरे देखो वो भी आना चाह रहा, कोई कहेगा नहीं? क्यों? इसलिए कि वो ना बस की तरफ आगे बढ़ रहा है ना कुछ, तो उसका आगे नहीं बढ़ना इस बात की अलामत है कि वो आना नहीं चाहता। मिसाल के तौर पर रिक्शा वाले इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। रिक्शा वाला अगर जाए किसी बस स्टॉप के पास से गुजरे, है कोई एरोड़ा वाला, अब आदमी चुपचाप खड़ा है वहां पे और आ रहा ही नहीं, तो रिक्शा वाला क्या समझेगा? अच्छा ये आना चाहता है, या क्या समझेगा? उसने इनकार किया नहीं किया उसने, लेकिन उसका वहां पे नहीं आना, उसकी तरफ देख रहा भी नहीं वो, बल्कि वो रुका हुआ है अपनी जगह पे, तो इसका मतलब रिक्शा वाला क्या समझेगा? नहीं आना चाहते। तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमलन नाफरमानी करे वो खामोश जबान से कह रहा है कि मैं जन्नत में नहीं आना चाहता, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता। तो इस हदीस से नहीं मालूम होता है, वरना कोई आदमी तकफीर करना शुरू करेगा। देखो हदीस में खुद है कि जिसने नाफरमानी की उसने क्या किया, तो वो काफिर, तो सबको काफिर बनाना आदमी शुरू करेगा अगर हदीस को सही नहीं समझेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो एक आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतिबा आपके बताए रास्ते पर चलने से रोकती है? जिस माशरे में हम हैं, जहां कुरान और सुन्नत की बात आज हम पेश कर रहे हैं और कई उलमा पेश कर रहे हैं, कई लोग पेश कर रहे हैं, कुछ लोग उस बात पर आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। तो जो लोग नहीं आते हैं उनकी वजूहात क्या है? क्या चीज एक आदमी के लिए किताब सुन्नत पर आने में रुकावट बनती है? इन चीजों को जानना क्यों जरूरी है? जरूरी है कि नहीं जानना? क्या रुकावट है? तो क्यों जरूरी है? दो सतहों पर, एक तो हम अपनी जात से सोचें कहीं हमको रुकावट कोई चीज मानने में बन रही है तो इनमें से क्या है, और दो, जब तक के डॉक्टर पेशेंट का प्रॉब्लम नहीं जानेगा उसका सोल्यूशन नहीं बता सकता है। तो लोगों के लिए क्या रुकावट है? अगर फुला आदमी के लिए कोई एक रुकावट है तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है, जब आदमी को मर्ज मालूम हो कि क्यों नहीं समझ रहा है। मसलन कोई आदमी डर रहा है कि समाज का प्रेशर उसके ऊपर है, तो उसको आप हिम्मत दिला सकते हो कि अल्लाह ताला मदद करेगा, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तू अमल तो कर। किसी आदमी का मसला दुनिया है, माल और दौलत है, आप उसको हिम्मत दिलाते दुनिया नहीं मिली नहीं मिली, आखिरत तो मिल जाएगी। तो अगर एक आदमी का एक प्रॉब्लम है, अगर आपको मालूम हो रुकावट क्या है, तो आदमी का इलाज भी, उसको समझाना भी आसान होता है, बच्चा क्यों स्कूल नहीं जा रहा। अब अगर मालूम हो तो उसको समझाया जा सकता है, मालूम ही नहीं क्यों जा रहा। अगर उसके पेट में दुख रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि स्कूल में जाने से डर रहा है, आप जबरदस्ती उठा के ले जाके छोड़ के आएंगे उसको। अगर वो वाकई बीमार है तो आप डॉक्टर के पास ले जाओगे उसको। तो एक आदमी का सबब जानना जरूरी है। तो पांच असबाब हैं आम तौर से, उसके अलावा भी हो सकते हैं, पांच असबाब हैं जो एक आदमी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने में रुकावट बनते हैं। नंबर एक, जो कि एक बहुत बड़ा सबब है, वो क्या है? बुरे उलमा और सरदारों की इत्तिबा, बड़े। और आम तौर से दीन के मामलात में लोग उलमा ही के पीछे चलते हैं, सरदारों के पीछे चलते हैं, जो समाज में बड़ी ताकत अथॉरिटी पोजीशन रखते हैं। एक आम आदमी खुद से फैसला नहीं करता है, जैसा बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं उनके पीछे चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा सबब है जो लोगों को हक पर आने में रुकावट बनता है। एक तरफ तो आलिम होते हैं जो मदरसों से फारिग होते हैं और उनके पास दीन का इल्म होता है, अगर इन्हीं में बिगाड़ आ जाए तो वो इल्म की मुखालिफत करना शुरू करते हैं और लोगों को बताते हैं ये सही नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, सही वो है जिस पर हम कायम हैं, हम बोलते हैं ना सुनो। इस तरह से बाज़ औक़ात खुद जब उलमा में बिगाड़ आ जाता है तो फिर लोगों को भी वो गलत रहबरी देने लगते हैं, और अवाम चूंकि जानकार नहीं होती है वो इन उलमा की बात मान के चलती है और खुद भी उनके साथ गुमराह हो जाती है। कभी समाज के बड़े लोग होते हैं, जो समाज में ताकतवर लोग होते हैं, अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, कभी इन लोगों की बातों में आके लोग गुमराह हो जाते हैं कि इनकी ताकत, इनका दबदबा, इनकी पॉलिटिकल पोजीशन, इनका माल दौलत, इनकी भीड़, इसको देख के एक आदमी क्या होता है, डर के चुपचाप अपना कहां इनकी मुखालिफत मोलेंगे, इनकी बात मान के चलो, समाज में अकेले रह जाएंगे, दुश्मनियां आएंगी, तकलीफें आएंगी। तो इस वजह से एक आदमी डर के बाज़ औक़ात इन सरदारों की मान के सुन्नत की मुखालफत करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन दोनों चीजों का जिक्र किया है और बताया कि इन असबाब की वजह से अगर कोई आदमी हक के वाज़े होने के बाद उसको नजरअंदाज करता है, आलिमों की वजह से, सरदारों की वजह से हक सामने आया, वाजे हुआ, लेकिन जाने दो बाबा कांट डीप में जाने का, जो अपने बड़े बूढ़े उसको ही पकड़ के चलो, दिल में आ रहा है अरे ये सही है, एक बार जरा आंख बंद कर लो, ज्यादा डीप में जाने का नहीं। अगर इस तरह से कोई आदमी सच्चाई को नजरअंदाज करके अपने बड़ों, अपने उलमा और अपने सरदारों की मानता है, तो ऐसा आदमी गुमराह हो जाता है, ऐसा आदमी गुमराह हो जाता है। अल्लाह ताला ने कयामत का मंजर बयान किया है सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 64 से 68 तक। इन अल्लाह लअनल काफिरीन व अअद्द लहुम सईरा। आयत की शुरुआत ही कहां से हो रही? इन अल्लाह लअनल काफिरीन, अल्लाह ने लानत की है काफिरों पर, इनकार करने वालों पर। व अअद्द लहुम सईरा, और उनके लिए तैयार कर रखी है एक झुलसा देने वाली आग। सईर, ऐसी आग जो लगते ही क्या हो जाए, चमड़ी उधड़ जाए। सईर, बहुत ही सख्त गर्म आग। अल्लाह ने लानत की काफिरों पर, इनकार करने वालों पर, और उनके लिए जहन्नम की आग तैयार है। खालिदीन फीहा अबदा, वो उस आग में, जहन्नम में हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। ला यजीदून वलियन वला नसीरा, उसमें कोई उनको न दोस्त मिलेगा वली, न उनको कोई मददगार मिलेगा नसीर। دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں, ولی اور نصیر. ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست, سرپرست, اور نصیر مدد کرنے والا, نصرت سے ہے وہ, نصرہ. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, نہ ان کو کوئی ولی ملے گا وہاں پہ دوست, نہ ان کو کوئی مددگار ملے گا کہ تھوڑی مدد ہی کر دے, نہ کوئی ایسا ملے گا کہ وہاں سے نکالے ولی, نہ کوئی ایسا ملے گا جو کچھ مدد ہی کر دے وہاں پہ, نصرت نصیب. یوم تقلب وجوههم فی النار, یوم اس دن, جس دن تقلب, تقلب قلبا سے ہے, قلبا پلٹنا, یوم تقلب وجوههم فی النار, وہ دن جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے. جس طرف وہ مڑیں گے کیا ہوگی وہاں پہ, یہاں مڑیں گے تو آگ, یہاں مڑیں گے تو آگ, تو جہاں بھی مڑیں گے ان کو آگ ہی ملیں گے. جس دن چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے, یقولون یا لیتنا, وہ کہیں گے جہنمی, یا لیتنا, ہائے افسوس, کاش. یا لیتنا, جب ایک آدمی بہت ہی افسوس کے ساتھ ناکام ہو کر پچھتاتے ہوئے کہتا ہے ہائے افسوس, کاش کہ میں ایسا کرتا, یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. دیکھیے جہنم میں جانے کے بعد کیا احساس ہوگا آدمی کو, کیا احساس ہو رہا ہے ان کو, اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی, کاش ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی, کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا, اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب, انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے فرما برداری کی, تو کس کی, سادتنا, سادات لیڈر, وکبراءنا ہمارے بڑے بڑے علماء, فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, تو انہوں نے تو ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ربنا, اے ہمارے رب, آتیہم, تو ان کو دے, ضعفین, دو گنا, من العذاب, عذاب کا حصہ, اے ہمارے رب تو ان کو ڈبل عذاب دے. ولعنہم, ان پہ لعنت ہوئی ہے کہ نہیں, کن لوگوں پہ لعنت ہوئی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی چھوڑ کے اپنے بڑوں کی اور اپنے لیڈروں کی فرما برداری کی. اس سے شروع میں کہاں سے شروع ہو رہا ہے, ان اللہ لعن الکافرین, اب چونکہ ان پہ لعنت ہوئی ہے تو یہ جہنمی لعنت کی دعا کر رہے ہیں, کس کے لیے, ولعنہم لعنا کبیرا, تو ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پہ بڑی لعنت ڈال دے. عذاب ان کو بھی ہے, لعنت ان پہ بھی ہے, یہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں جہنم میں, بڑوں کے لیے. کیوں اور کیا دعا کر رہے ہیں, دو چیزوں کی, عذاب کی اور لعنت کی. عذاب کتنا دے تو ان کو, دگنا. دگنا کیوں, ایک تو خود وہ غلط راستے پر چلے اس کا, دوسرا ہم کو بھٹکایا اس کا بھی, ایک بھٹکنے کا دوسرے بھٹکانے کا, تو ڈبل عذاب دے. اور لعنت ان پہ بھی ہے, تو ان پہ لعنت ڈال, کیسی لعنت, لعنن چھوٹی نہیں, تو ان پہ بڑی لعنت ہے. کبیرا, یہ کون ہے, کبرا انا, انہوں نے اللہ اس کے رسول کی چھوڑ کے کن کو, کن کی اتباع کی, بڑوں کی, بڑے ہیں نا وہ, تو ان پہ لعنت بھی کیسی ڈال. قرآن کے الفاظ دیکھیے, برابر الفاظ مناسب ہوتے موقع کے اعتبار سے, اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے, ان پہ لعنت ڈال, بڑی لعنت ڈال, اس لیے کہ بڑے ہیں, چھوٹے نہیں ہیں, یہ دوسروں کی گمراہی کے بھی ذمہ دار ہیں, ان کے بڑے پن نے ہم کو بھٹکا دیا, اب تو ان پہ بڑی لعنت ڈال دے. یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا انجام ہے, دیکھیے اس میں غور کیجئے. ایک تو یہ کہ کوئی آدمی اپنے لیڈروں اور بڑوں کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری چھوڑتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, صحیح, اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دے بڑوں کی وجہ سے, تو ایسا آدمی کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دے تو یہ آدمی کیا ہو جاتا ہے, اسلام سے اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ لعن الکافرین, اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے. فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین, اللہ نے صاف کہا ہے کہ کسی کی بھی وجہ سے بڑا کوئی ہو, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کر دے آدمی, حق کے واضح ہونے کے بعد وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور لعنت کا حقدار بن جاتا ہے, اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. تو دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے صفحے پر, وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل, اس حصے کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں وقال طاؤس, طاؤس کون ہے؟ وہی وقال طاؤس سادتنا یعنی الاشراف. سادتنا کون ہے؟ الاشراف, قوم کے شریف لوگ. شریف مطلب بڑے لوگ, جو قوم میں کیا بڑے سمجھے جاتے ہیں, عزت والے لوگ. وکبراءنا یعنی العلماء, اور بڑے کون ہیں؟ علماء, ہمارے بڑے. تو یہاں پر بڑے سے مراد کون ہیں؟ علماء. رواہ ابن ابی حاتم, ابن ابی حاتم نے یہ روایت نقل کی ہے اپنی تفسیر میں. آئی کیا مطلب ہے؟ اتبعنا السادۃ وهم الامراء, ہم نے اپنے سادات کی اتباع کی جو کہ ہمارے امراء ہیں, امیر ہیں, بڑے ہیں, یعنی ہمارے لیڈر ہیں. والکبراء من المشیخ, اور ہمارے مشائخ کی جو کہ بڑے ہیں, مشائخ ہمارے مشائخ بھائی, بڑے ہمارے پیر صاحب ہیں ہمارے, ان کی ہم نے اتباع کی. وخالفنا الرسل, اور ہم نے رسولوں کی مخالفت کی. واعتقدنا ان عندهم شيئا, اور ہم اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہمارے لیڈروں کے پاس, ہمارے بڑوں کے پاس کچھ ہے, ان کے پاس حق ہے. وانهم على شيء, اور وہ بنیاد کوئی پکی بنیاد پر قائم ہے. فاذا هم ليسوا على شيء, لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کسی بھی بنیاد پر تھے, ٹھوس بنیاد پر نہیں تھے, وہ غلط بنیادوں پر تھے, اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ جہنم میں پہنچ گئے. تو آج بھی کوئی آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, کس کی وجہ سے؟ دو وجوہات یہاں پر آئی ہیں. ایک کون ہے؟ لیڈر, قوم کے اشراف, اور دوسرے کون ہے؟ علماء. تو علماء کی تو ماننا چاہیے نا, یہاں تو کیسے یہ نکل رہا ہے, علماء کی نہیں ماننا چاہیے؟ کیا ماننا چاہیے؟ ہاں, بے دلیل کے ماننے سے جہنم میں جائیں گے. پھر سے ذرا جملہ دیکھیے واپس سے کیا ہے, وہ کیا بولیں گے؟ ربنا سے شروع کیجئے, کیا جملہ ہے ان کا؟ ہاں, انہوں نے کیا کہا؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی مانی ہوتی. ٹھیک. وقالوا ربنا انا اطعنا, اب اطاعت ادھر نہیں کی اور ادھر کی, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی چھوڑ کے اگر بڑوں کی مانتے ہیں تو یہ لوگ کیا ہو گئے؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بڑوں کو ترجیح دی اور اس سے اسلام سے نکل گئے اور ان کو جہنم نصیب ہوئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تفسیر ابن کثیر میں بات کی, یعنی علماء کی ماننا غلط ہے کہ نہیں ہے؟ غلط ہے نا, علماء کی ماننے کے نہیں, ہم لوگ ہی علماء ہیں نا, علماء کی ماننا چاہیے, لیکن علماء کی وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو ماننا چاہیے؟ نہیں ماننا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اگر مانتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ سیدھا, اللہ ہم سب کو بچائے. نمبر دو, تو ایک بہت بڑا وجہ, بڑی وجہ لوگوں کی کیا ہوتی, اتنے سارے علماء کے پاگل ہیں, پاگل نہیں ہے, لیکن پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آپ کیا کہو گے؟ اس کے مقابلے میں کسی کی ماننا ہے؟ ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور سارے علماء کچھ سمجھا رہے ہیں, تو یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء کیا سمجھا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی یاد رکھیے, ورنہ عربی بھی آتی نہیں. اور میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے جیسے پچھلی حدیث تھی کہ جس نے نافرمانی کی وہ کیا ہو گیا؟ اس نے انکار کیا, وہ کافر. تو ہر شرابی کافر, ہر ایک حکم بھی توڑ دیا رسول کا وہ کیا ہو گیا؟ ذرا سا گناہ ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ انکاری ہے, وہ کافر ہو گیا. तो ये मतलब नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि किताब और सुन्नत की इत्तिबा करना चाहिए, लेकिन कैसे, सलफ का फहम लेना चाहिए। अपने अकल में जो आ रहा, मेरी अकल में तो ये आ रहा है, इसकी अकल शरीफ में आ रहा ये नहीं, हमसे पहले सलफ क्या समझते आए हैं। हाँ, अगर कोई वाज़े बात है कि कुरान और सुन्नत की है और कोई बड़ा आलिम उसकी मुखालफत करे, उस बात को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। दोनों में फर्क समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दोनों में फर्क है। आप बोलिए उलमा की मानना भी बोल रहे, नहीं मानना भी बोल रहे, क्या मतलब है? देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे उलमा कुरान और सुन्नत के खिलाफ जाए, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा होगा कि किसी आलिम की कोई बात किताब और सुन्नत से टकराए और दूसरा आलिम उसके मुताबिक बोले। अब ऐसा, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, किसकी मानेंगे? उसकी मानेंगे जिसकी उसके मुताबिक हो, उसकी बात नहीं मानेंगे जिसके उसके खिलाफ। अच्छा, उसके बारे में काफिर का फतवा देंगे? बहुत शौक है अपने को फतवा देने का काफिर का। हो सकता है उनको नहीं पहुंची वो हदीस, हो सकता है उन्होंने कुछ और मतलब समझा उसका। हर आलिम से गलती हो सकती है। नंबर दो, दूसरी वजह, बाप दादा का तरीका। बहुत सारे लोग, उनसे कहा जाए कि देखो कुरान और सुन्नत में ऐसा है, तो उनके लिए दीन क्या होता है? बाप दादा का तरीका। आप फाते क्यों देते? बोले बाप दादा का तरीका है। कुंडे, बाप दादा का तरीका। झंडे मोहरम के, बाप दादा का तरीका है। दरगाह पे जा रहे हैं, सज्दे कर रहे हैं, बाप दादा का तरीका। ग्यारहवीं, बाप दादा का तरीका है। निकाह की हल्दी, जल्दी, मंगनी, सब क्या है? बड़े बुड्ढों का तरीका है। तो बहुत सारी चीजें, इंसान की फितरत है, वो बाप दादा से क्या करता है, बाय डिफॉल्ट दीन लेता है, वो चेक नहीं करता उनको। हाँ, अपने केस चेक करता बराबर है, निकाह किससे कर रहे चेक करता बराबर है, कपड़े ईद को कौन से ला रहे बराबर चेक करता हो, खाने में क्या बना रहे बराबर चेक करता है, इसके वलीमे में क्या बन रहा, बाकी सारी चीजें इंसान चेक करता है, लेकिन दीन के मामले में अरे बाप दादा जो करते हैं वो करने का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आम इंसानों का होता है कि वो दीन के मामलात में बाप दादा को चेक करने की जुर्रत नहीं करता है। उल्टा जो ऊपर से आ रहा है, इज्जत से उसको लो, इज्जत से उसको आगे पहुंचाओ। लेकिन हमारे लिए तरीका सही है, इस्लाम ऐसा दीन नहीं है कि जिसमें हर एक के बाप दादा सही रहते हैं। इसलिए कि किसी के बाप दादा देवबंदी हैं, किसी के बाप दादा बरेलवी हैं, किसी के कोई और हैं। तो अब बाप दादा में झगड़ा हो रहा, तो अब किसके बाप दादा सही? क्या सारे बाप दादा सही हो सकते हैं? तो किसी न किसी को सही होना पड़ेगा, और कोई ना कोई गलत है। तो चेक करने के लिए बुनियाद क्या है? कुरान और सुन्नत। समझ में आया? तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बाप दादा को चेक किया जाएगा। लेकिन अक्सरियत का हाल क्या होता है, वो बाप दादा ही को दीन का मेयार बना लेते हैं, क्राइटेरिया बना लेते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसकी बुराई बयान की है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, तो एक बहुत बड़ी रुकावट उनके लिए भी क्या थी दीन के मानने में? बाप एंड दादा, बाप दादा। उन्होंने भी क्या कहा, अल्लाह ने उनका जुमला कोट किया है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी जो अल्लाह ने बयान की, ताकि कयामत तक लोग पढ़ें कि पहले नबी, जो आखिरी नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको क्या रुकावट पेश आई। क्या आयत है? सूरह अल माईदा में आयत नंबर 104, वइदा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है तआलौ, तआलौ आओ, इला मा अंज़लल्लाहु, उस चीज की तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल की है, व इला रसूल, और रसूल की तरफ आओ, दो चीजों की तरफ दावत दी जाती है। एक साहब बोलने लगे, ये जो तुम बोल रहे हैं कुरान और हदीस, कुरान हदीस, कुरान सुन्नत, क्या सहाबा उस जमाने में कुरान हदीस की दावत देते थे क्या? दलील क्या है इसकी? अब जो आदमी बेचारा कुरान ही नहीं पढ़ता, उसको क्या मालूम पड़ेगा कि कुरान की दावत क्या थी। एक साहब बोलने लगे इस तरह, दलील लाओ। उस जमाने में ईमान की दावत चलती थी, उस जमाने में कुरान हदीस की दावत चलती थी नहीं? सही है नहीं? गलत है। यह आयत क्या है? वइदा क़ील, याद रखिए, ऐसा आपको मार्केट में पब्लिक मिलेगी कि वो बोलेगी तुम तुम्हारी दावत क्या है कुरान हदीस की, किधर ये दावत बताओ, कुरान है क्या दावत, साहबा दावत देते थे क्या? अल्लाह ने बयान किया है कि जब उनसे कहा जाता है, किन से, जो लोग नहीं मान रहे उनसे क्या कहा जाता है, तालो आओ, किसकी तरफ आओ, चार इमामों की तरफ या बारह इमाम की तरफ, जमात की तरफ आओ हमारी, तालो इला मा अंजल अल्लाह, एक जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी तरफ आओ, वो इला रसूल, और किसकी तरफ आओ, रसूल की तरफ, अल्लाह ने नाजिल किया कुरान और रसूल वहां मौजूद है, तो अल्लाह के नाजिल किए हुए कुरान और इस रसूल की तरफ आओ, तो दावत किसकी तरफ आने की थी उस जमाने में, रसूल की तरफ आओ का मतलब क्या, खाली आगे ठहरो उधर देखने के लिए, यानी रसूल की तरफ आओ का मतलब रसूल जो दावत दे रहे हैं उसकी तरफ आओ, रसूल की बात की तरफ आओ, रसूल की इत्तिबा की तरफ आओ। तो थी कि नहीं उस जमाने में दावत कुरान हदीस की, आज हमारी कौन सी दावत है, हम किसकी तरफ बुला रहे हैं, इमाम की तरफ, जमात की तरफ, घर की तरफ, अपने क्या हमारे ताजी की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की तरफ, अल्लाह ने जो नाजिल किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखलाया है उसकी तरफ दावत। तो उस जमाने में भी थी, इस जमाने में भी है। तो लोग बोलते हैं तुम लोग नए हैं, हम लोग बहुत पुराने, हमारी दावत भी बहुत पुरानी है, हम भी आज उसी की तरफ बुला रहे जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बुलाते थे। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, जवाब में पब्लिक क्या बोलती थी, आज भी वही बोलती पब्लिक, चेंज नहीं हुई पब्लिक, قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, तो लोग जवाब में कहते हैं हमारे लिए काफी है, हस्बुना काफी है, मा वजदना अलैहि आबाअना, वही चीज जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया, हमारे बाप दादा जो रास्ते पर जो दीन पर चलते आए हैं वो दीन वो तरीका वो रास्ता हमारे लिए काफी है, हमको आने की जरूरत नहीं इधर उधर, किधर आने की जरूरत नहीं, अल्लाह के कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, इसकी तरफ आने की जरूरत नहीं है। अवलव कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, अल्लाह ने जवाब में कहा कि क्या उस वक्त भी वो नहीं मानेंगे, इस वक्त भी वो बाप दादा के पीछे चलेंगे, जबकि उनके बाप दादा किसी चीज का इल्म नहीं रखते थे और खुद हिदायत पर नहीं थे, तब भी वो बाप दादा के पीछे चलेंगे, न उनको नॉलेज था, न उनके अमल में हिदायत थी, न वो खुद हिदायत पर थे, न इल्म रखते थे, तो क्या फिर भी बाप दादा के पीछे चलेंगे। मालूम हुआ कि इल्म वाले के पीछे चला जा सकता है, बगैर इल्म के किसी के पीछे, और इल्म कौन सा होना चाहिए, किताब सुन्नत का इल्म होना चाहिए, पब्लिक क्या, किसकी तरफ दावत दी जा रही, कौन से इल्म की तरफ, ऊपर किसकी तरफ बुलाया जा रहा है, तो हमारे नजदीक इल्म कौन सा है, कुरान और सुन्नत ही का, जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा दावत देते थे। तो जो किताब और सुन्नत का इल्म रखता है उसके पीछे चला जा सकता है, बशर्ते कि उसके हिसाब से खुद भी चले और दूसरों को भी चलाए। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे बाप दादा को अगर कुछ इल्म नहीं था, अगर वो खुद भी हिदायत पर नहीं थे तब भी उनके पीछे चलेंगे, तो मालूम हुआ कि अगर बाप दादा बगैर इल्म के कुछ करते थे और वो खुद हिदायत पर नहीं थे, गुमराही पर थे, तो उनके पीछे चलना चाहिए। अब कैसे मालूम पड़ेगा वो हिदायत पर थे या नहीं थे, फिर किधर रुजू करना पड़ेगा, किताब और सुन्नत की तरफ, उसी इल्म की तरफ जो अल्लाह की तरफ से आया है। अगर बाप दादा हिदायत पर थे तो उनके पीछे चलने का कि नहीं, वरना कोई आदमी सोचेगा बाप दादा के पीछे चलना मना है, हमारे बाप दादा मुसलमान थे हमको उनके पीछे नहीं चलना चाहिए, फिर हम क्या दूसरा ईसाई बन जाएं। तो बाद लोग कहते देखो ये लोग बोलते बाप दादा के दिन पे नहीं चलने का, हम ये बोलते हैं कि बाप दादा अगर हिदायत पर हो तो उनके पीछे चलने का, अगर वो इल्म के ताबे हो दलील पर हो तो उनके पीछे चलने का, नहीं हो तो, इसलिए दो बातें अल्लाह ने क्या बयान की यहां पर, हिदायत और इल्म, अगर वो इल्म की रोशनी में चल रहे हों, अगर वो लोग वाकई हिदायत पर हों तब तो उनके पीछे चल सकते हैं, अगर नहीं हो तो नहीं। तो चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। कुरान की आयत में देखिए यानी बहुत सारी बातें होती, जितना उसको यानी गौर करे आदमी उतनी चीजें सामने आती है। और आगे बढ़िए दूसरी जगह और अल्लाह ने फरमाया, और ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला नहीं था बल्कि सारे नबियों को ये मुसीबत पेश आई कि उनकी कौमें बाप दादा जिंदाबाद वाली कौमें थी। कैसे देखिए अल्लाह ताला सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 23 में फरमाता है وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, और ऐसे ही यानी ऐ नबी जैसा आपके साथ हो रहा है ऐसे ही وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, हमने पहले आपके पहले जो भी रसूल भेजा फी क़रयतिन किसी भी देहात किसी भी शहर किसी भी इलाके में मिन नदीरिन डराने वाला खबरदार करने वाला लोगों को उनकी गफलत से जगाने वाला जो भी हमने भेजा इल्ला काला मुतरफूहा तो उस कौम के मालदार बड़े तबके ने हमेशा जवाब में यही कहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन हमने अपने बाप दादा को एक खास दीन पर पाया है वो इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। हर नबी को जवाब कौम का क्या मिला हमारे बाप दादा एक दीन पे थे हम भी उसी दीन की इत्तिबा करेंगे जो कहां से मिला है और नबी के दीन पे चलेंगे नहीं। तो नबियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला यह था कि जिन कौमों में इनको भेजा गया वो कौमें कौन से दीन पर चलती थी बाप दादा के दीन पर और लोग चेक नहीं करते थे बाप दादा का दीन सही है या गलत है। आज अगर हम भी उनके तरीके पर चलें तो क्या सही होगा नहीं क्यों इसलिए कि आज खुद मुसलमानों में जितने मुसलमान आज जमीन पर हैं उनके बाप दादा खुद कई फिरकों में बटे हुए हैं। क्या सब एक फिरके पे एक दीन पर हैं नहीं वो कई अलग अलग जमातों में फिरकों में बटे हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला चुके हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक। तो मालूम करना पड़ेगा ये जो हमारे बाप दादा हैं ये कौन सी फिरके में सही है कि गलत है और वो चेक करने के लिए क्या आपने जिक्र किया कौन एक जन्नत में जाएंगे मा अना अलैहि व असहाबी जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो अगर हमारे बाप दादा उस दीन पर हों जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का दीन था वही अकायद वही अमल वही उसूल वही बुनियाद तो सही वरना हमको उनकी भी इस्लाह करनी पड़ेगी और उनके तरीके को छोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी वजह बाप दादा रही है। नंबर 3 ख्वाहिशात की इत्तिबा। बहुत सारे लोगों से कहा जाए कि कुंडे बंद करो तो पहले उनकी निगाहों में कुंडे बोलते क्या आता है खीर और पूरी। अगर उनको बोलेंगे ये मुहर्रम बनाना सही नहीं है तो मुहर्रम के नारे और मुहर्रम का शरबत उनके सामने आता है। अरे फातह देना बिदात है और कुरान खानी बिदात है तो कुरान खानी बोलते ही क्या सामने आता एक तो कुरान आता वो तो डिफॉल्ट है कुरान खानी और कुरान के साथ एक दूसरी चीज सामने आती क्या आती वो बूंदी। तो अक्सर बिदात में खाने पीने मौज मस्ती थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसके साथ में। तो एक आदमी और ईद सादी सीधी होना चाहिए नाच गाना नहीं हो पताके बांधना ढोल ताशे और नारे तकबीर इस तरह का कुछ नहीं हो सीधा सादा ईद मना अरे फीका फीका इस्लाम अपने को नहीं चलता फीका फीका इस्लाम अपने को नहीं चलता। लोगों को चाहिए एकदम चटपटा रंग बिरंगी इस्लाम चाहिए हरा भरा इस्लाम चाहिए देख पकड़ कितने अच्छे लगते खिचड़ा मुहर्रम का खिचड़ा बोलते मुसलमान को एकदम होटल में जाके देगा जुम्मा का क्या बोला आज स्पेशल जुम्मा का खिचड़ा है दीन का खिचड़ा निकलेगा चलेगा खाने को खिचड़ा नंबर एक उसको पहले होना। तो आम तौर से आप देखें बिदात और खुराफात के साथ में खाने पीने मौज मस्ती एंटरटेनमेंट का पहलू जुड़ा होता है। बहुत सारे लोग इल्मी एतबार से समझ लेते हैं हाँ ये गलत है लेकिन उनका दिल उसको छोड़ने को तैयार होता क्यों इसलिए इतना मजा आता अपने, बहुत अच्छा लगता है। शिवापुर हम लोग जाते, वहां शिरक नहीं करते, वहां पे खाली हम पिकनिक के लिए जाते हैं। तो बहुत पिकनिक का एलिमेंट जो है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको मजा जुड़ा हुआ रहता है। कितना चलते हैं दरगाह पे जाके वहां पे खाने, वहां का पकाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। बोले यहाँ क्या है, गैस पे खा खा के थोड़ा टेस्ट नहीं आता, वहां लकड़ी पे जब पकाते ना बहुत अच्छा लगता है। और लोग कैसा भी पकाओ अच्छा बनता, बोलते ना न्यास का खाना आड़ा टेढ़ा कैसा भी पकाओ उसमें टेस्ट रहता है। तो लोगों को कैसा है, खाना पीना मौज मस्ती बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से बहुत सारी बिदात के साथ ये चीजें जुड़ी भी होती है, उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ख्वाहिशात की इत्तिबा लज्जत एक आदमी के लिए सुन्नत में रुकावट बन जाती है। सुन्नत में रुकावट एक चीज क्या होती है, लज्जत, कि सुन्नत पे आने के लिए लज्जत को छोड़ना पड़ेगा, और वो अपने से होता नहीं, वो नहीं होता जल्दी आदमी से। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, फइल्लम यस्तजीबू लक, ए नबी अगर ये लोग आपकी पुकार को कबूल न करें, यस्तजीबू इस्तजाबा, यस्तजीबू इस्तजाबा का मतलब होता है पुकार को मानना, कबूल करना, मैसेज मान लेना। फइल्लम यस्तजीबू लक, ए नबी अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं, आपकी दावत कबूल नहीं करते हैं, फालम अच्छी तरह से आप इस बात को जान लो, अन्नमा यत्तबिउन अहवाअहुम, ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। यानी ए नबी अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं, तो नहीं मानने की वजह क्या है, ये किसके पीछे चल रहे हैं, ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। तो मालूम हुआ कि नबी के मानने से रुकावट एक बहुत बड़ी चीज क्या होती है, ख्वाहिशात के पीछे चलना, ख्वाहिशात के पीछे चलना। وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اور اللہ نے آگے کہا اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ دیکھیے آپ کو میٹھا بہت اچھا لگتا، آپ افطار جس چیز پہ کرتے ہو کیا ہے، کھجور کیسا ہوتا، کھٹا ہوتا، تیز ہوتا، کیسا ہوتا، میٹھا ہوتا ہے۔ تو आप खजूर मीठा है, मीठा बहुत पसंद है, तो नहीं खाना चाहिए खजूर इफ्तार में, नहीं खाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सुन्नत क्या है, खजूर पे इफ्तार है। तो हमने अपनी लज्जत को किसके ताबे किया, सुन्नत से साबित है तो करेंगे, सुन्नत से साबित है तो मीठा लज्जत है, बहुत अच्छा लगता खा के, तो खाएंगे हम, क्यों, वो सुन्नत में है। तो सुन्नत के ताबे अगर लज्जत हो तो मना है, नहीं मना है। लेकिन सुन्नत के खिलाफ लज्जत अगर है तो वो मीठा नहीं भी है तो मना है, अगर खिचड़ा भी है अगर मुहर्रम का तो क्या है, नहीं करना है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया यहां पर, देखिए जुमला बहुत जामे है, वमन अदल्लु, और उससे बढ़ के गुमराह कौन हो सकता है। तो फतवा उस पर कह का लग रहा है, हिदायत का या गुमराह का, गुमराह का। तो कौन गुमराह है, मिन मन तबा हवाहु बिगैर हुदा मिन अल्लाह, अल्लाह की हिदायत के बगैर जो अपनी ख्वाहिशात पर चले उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है। हां अगर अल्लाह की हिदायत ख्वाहिशात पे चलने की इजाजत देता है, यानी इंसान की चाहत को पूरा करने की इजाजत देता, बीवी से सोहबत करना जायज है कि हराम है, एक आदमी जो है ऐसी लज्जत जो शरीयत में जायज है, खाना पीना जिमा, लेकिन वही रोजे में क्या हो गया, मना हो गया, अब रोजे की हालत में करता है तो क्या हो गया, गुनाह हो गया, समझा। तो ख्वाहिशात लज्जतें अगर अल्लाह की शरीयत के ताबे हैं तो जायज है, शरीयत के मुकाबले में आदमी अगर उनको इख्तियार करता है तो क्या है, हराम है। समझ में आया। तो उस आदमी से बढ़ के गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत को छोड़ के अपनी ख्वाहिशात और अपनी अकल के ताबे चलने लगे, जो उसके दिल को भाए उसको सुन्नत बनाए, है ना। बहुत सारे लोगों का कायदा क्या होता, ये अपने को बहुत अच्छा लगता, चलो ऐसा करेंगे। बहुत सारे लोग नए नए तरीके निकालते हैं और उसी को दीन का मर्तबा देते हैं, उनकी अकल में आता है अच्छा इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा क्या है। तो ऐसा करना गुमराही है, क्यों, इसलिए कि इसके लिए क्या नहीं है, अल्लाह की तरफ से आई हुई रहबरी नहीं है। देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एक है हवा
थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक लफ्ज है हवा, एक लफ्ज है खुदा। कितना एक जैसा दिख रहा ना, है एक जैसा हो। खुदा का मतलब क्या होता है और हवा का मतलब ख्वाहिशात, जो इंसान की अकल को भला लगे वो क्या है हवा, और जो अल्लाह ने बताया कि अच्छा है वो क्या है खुदा। समझा? तो किसको किसके ताबे होना चाहिए? हवा को खुदा के ताबे होना चाहिए। लेकिन अगर हुदा की बजाय हवा पे आदमी चलने लगे, ये क्या है? गुमराही। समझा? तो अल्लाह ने फरमाया कि फइल्लम यस्तजीबू लक, अगर ए नबी आपकी बात को नहीं मानते तो आप जान लो कि ये अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, और उससे बढ़ के गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत की बजाय अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा करने लगे हैं। ये अल्लाह ने सूरह अल-क़सस में कहा है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि वअसा अन तकरहु शैअन वहुवा खैरुल लकुम, बहुत मुमकिन है कोई चीज तुमको नापसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए भली हो, और वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शरुल लकुम, ये हो सकता है कि कोई चीज तुमको बहुत पसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या हो, शर हो, बुराई हो। वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह को मालूम है और तुमको कुछ भी नहीं मालूम। अल्लाह को मालूम है तुमको नहीं मालूम। जो आदमी इसको समझ ले वो आदमी शरीफ है, जो आदमी इसको नहीं समझे वो खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। कि एक आदमी मुझको ही अच्छा लग रहा है लेकिन अल्लाह की निगाह में अच्छा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है कि नहीं है? है। अगर सिर्फ ये देखे आदमी यार अच्छा लग रहा नहीं, तो वह आदमी क्या होगा, गुमराह हो सकता है। और जो आदमी कहे अच्छा तो लग रहा लेकिन देखो सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, तो जो आदमी अपने तजर्बे, अपनी चाहत, अपनी समझ पर अल्लाह की तरफ से आए हुए इल्म को अगर तरजीह नहीं देता है वह आदमी गुमराह हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अरे फाते में प्रॉब्लम क्या है तुमको, कुरान पढ़ते, मस्जिद में बैठते, बुंदी खाते, सूरह फातिहा पढ़ते, मुर्दे को बख्शते, बेचारा मर गया कोई पूछने वाला नहीं, उसको सब मिलके पूछ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, इतने कंजूस तुम लोग, उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं, और तुम्हारी बुंदी थोड़ी हो, तुमको प्रॉब्लम क्या है? ग्यारहवीं की न्यास करते हम लोग, तुमको प्रॉब्लम क्या है, बुरा क्या दिखता है, खाना ने अनाज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लोग कितने भोली भाली बातें करते, बोले अनाज का क्या कसूर, कितना कसूर हुआ रखे, अनाज का क्या कसूर है, खाना अच्छा बुरा कैसा हो जाए, तो खाना है ना वो रिज़्क़ है, अल्लाह ने भेजा ना वो, हाँ दादा की छट्टी, खाजा की छट्टी, वो तो रिज़्क़ का क्या कसूर है, खाना से ना होगी। तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अल्लाह ताला ने जिसको मना कर दिया वो बुरा, अल्लाह ने जिसको जायज रखा वो अच्छा, ये अगर आदमी समझ ले वो आदमी बच गया। अपनी अकल चलाएगा तो कोई आदमी बैंक में से बाहर निकलेगा, उनको पैसा है नहीं, सूद है, लेकिन पैसे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम्हारी जेब में निकालो नोट, देखो 10 के हैं, 5 के हैं, 100 के हैं, ये नोट कौन से हैं, 15 के हैं, 25 के हैं, कौन से हैं, 200 के हैं, ये भी वही नोट है, वो भी वही नोट है, तो बोले नोट का क्या कसूर है, लो ना, मुसलमान सूद नहीं लेता है, बोले नोट का क्या कसूर है, समझ में आई बात? तो नोट का कसूर नहीं है, नोट का जो तरीका है लेने का उसका कसूर है। एक आदमी पॉकेट मारा किसी का और अगले स्टेशन पे आपको दावत दिया और आपने देखे थे इसने पॉकेट मारा था, बोले नहीं खा सकते हम लोग, हराम है ये, बोले उसकी जेब में था तो हलाल और मेरे पास है तो हराम, उसके पैसे, वो अच्छा खासा बेचारा मौलवी है, वो बेचारा था अपनी जिक्र फिक्र में, इसने हाथ डाला निकाला, बोले मौलाना के पैसे है ये, हलाल एकदम खाओ,
खाएंगे।
बोले पैसे का क्या कसूर है? बोले जो तरीके से फाते थे कि तेरे पास ये आए हैं, जो स्टाइल में तूने लिया है उस तरीके की वजह से ये हराम हुआ। फी नफ्सी ही, नोट हराम नहीं है, लेकिन तेरा जो तरीका था लेने का उस तरीके की वजह से क्या हो गया, हराम। तो खाने की चीज हराम नहीं होती है, लेकिन जो तरीके से उसके ऊपर अमल हुआ है वो तरीके की वजह से अब ये क्या हो गया, हराम हो गया। इसे कोई आदमी ज़बा कर रहा है, जानवर वही जानवर है, बकरा ही है, साइड में भी बकरा। इसको समझिए अच्छी तरह से, लोगों को समझ में नहीं आता है। इसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा और उसने गुड मॉर्निंग बोल के किया, चलेगा? या अब्बा अस्सलाम वालेकुम बोला होगा, ये तो मुसलमान का हो गया ना भाई। कैसे बकरे साहब आप सॉरी सॉरी बोलते हुए किया उसने, अगर जायज होगा? बोले इसने भी छुरी चलाया, उसने भी छुरी चलाया, और ये भी बकरा है 10,000 का है और वो भी 10,000 का है, ये हलाल वो हराम नहीं। क्यों? इसलिए कि जिस तरीका से उसको ज़बह किया गया है वो क्या है, गलत है। एक सही है और दूसरा गलत है। गोश्त इसमें भी निकल रहा है, उसमें भी निकल रहा है, इसमें भी हड्डी है, उसमें भी हड्डी है। इसलिए याद रखिए कि जो तरीका होता है किसी चीज को हलाल करने का, अगर वो इस्लामी नहीं है वो चीज हलाल होगी नहीं होगी, चाहे वो चीज कितनी अच्छी हो। बकरा तो हलाल तरीके से, हलाल पैसे का, हलाल तरीके से खरीद के लाया, लेकिन हलाल तरीके से ज़बह नहीं किया, वो हलाल है? समझाए? तो ये बात याद रखें कि बहुत सारी चीजें आदमी सोचता है इसमें बुरा क्या है, अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। अच्छा वो है जिसको अल्लाह कहे अच्छा है, बुरा वो है जिसको अल्लाह कहे बुरा है। अल्लाह ताला हमको समझता फरमाए। इसमें कुछ बची हुई बातें थी, इंशाल्लाह अगले दर्स में हम उसको मुकम्मल करेंगे। अब हमारे दो टॉपिक इसके बाद रह जाते हैं, बिदात की बुराई और बिदात के बारे में शुबहात। असल में ये आपका बाइंडिंग में आगे पीछे हो गया है, चौथा वाला इसके बाद आना चाहिए, तीसरा वाला चौथा होना चाहिए। बिदात के नुकसान पहले हम लेंगे।